गणेश आशीष दो, तुम मोती मैं सीप, शिव विवाह की कथा का मैं जगा रहा हूँ अब दीप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सारे बोलो नमः शिवाय। सरस्वती माँ सरगम गाए शिव विवाह की कथा सुनाए, सरस्वती माँ सरगम गाए शिव विवाह की कथा सुनाए, नारद वीणा मधुर बजाए शिव विवाह की कथा सुनाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोलो नमः शिवाय।
शिव कथा प्रेमी बंधुओं, अब तक आपने ना जाने कितने देवी देवताओं के विवाह की पावन कथाएं सुनी होंगी, परंतु आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ के दो विवाहों की पावन कथाएं सुनाने जा रहा हूं। वो भगवान भोलेनाथ जिनके अनगिनत नाम और अनगिनत रूप हैं, उन भोलेनाथ को प्रणाम करके उनके दो दो विवाहों की पावन कथाएं आपको सुनाता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप इसे पूरी भक्ति श्रद्धा और प्रेम के साथ श्रवण करेंगे। आदिकाल की ये है कहानी, ब्रह्मा ने रच जब सृष्टि, ब्रह्मा जी की भौंसे जन्मी संध्या नाम की एक युवती, फिर इसके बाद में एक युवक ब्रह्मा के सामने आया था। ब्रह्मा जी के श्री चरणों में उसने शीश झुकाया था, ब्रह्मा उसको कंठ लगाकर उसका काज बताए। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोलो रामेश्वराय।
आदिकाल की बात है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लगे हुए थे, तब उनकी भौंसे एक अत्यंत सुंदर युवती उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। इसके बाद वहां एक रूपवान युवक उत्पन्न हुआ, उसके हाथ में पांच पुष्प बाण थे। वे ब्रह्मा जी से अपना कार्य पूछने लगे, तो ब्रह्मा जी ने उसे कामदेव का नाम देते हुए ये कहा कि तुम सृष्टि के प्राणियों में काम प्रेम और मत जगाकर सबको अपने वश में रखोगे। ब्रह्मा जी के निकट ऋषि मुनि भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी उस सुंदर युवक को आशीर्वाद दिया और उसके बाणों में दिव्य शक्तियां उत्पन्न कर दी। तभी एक विचित्र घटना घटी, कामदेव ने अपने बाणों की परीक्षा लेने हेतु वो सभी बाण उन सब पर चला दिए, जिसके फलस्वरूप वे सारे काम की ज्वाला में जलने लगे और कामुक दृष्टि से संध्या की ओर देखने लगे। चला बाण फिर ऐसा हुआ था, घटना बड़ी विचित्र घटी, सब ऋषियों संग ब्रह्मा में भी तीव्र काम की ज्वाला उठी। मुनि वशिष्ठ की आज्ञा लेकर संध्या ने शिव का ध्यान किया, सुन के प्रार्थना शिव थे आए, संध्या को उन्होंने दर्श दिया। रो रो कर उन्हें संध्या देवी सारी बात बताए। जटा धराय शिव जटा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
जटा धराय शिव जटा धराय, हर हर बोलो जटा धराय।
भक्त जनों, संध्या ने जब शिव से पूछा तो शिव ने बताया के काम देव ने जो काम बाण चलाए हैं उन्हीं के असर की वजह से ऐसा हुआ है कि वे सब तुम्हें कामुक दृष्टि से देख रहे हैं। परंतु तुम इसकी चिंता न करो, समय आने पर ब्रह्मा को इस तुच्छ कार्य का मैं दंड अवश्य दूंगा। फिर संध्या को उद्धार का मार्ग बताते हुए उन्होंने ये बताया कि कुछ दूर मेघा ऋषि एक यज्ञ रचा रहे हैं, तुम स्वयं को यज्ञ की अग्नि में प्रविष्ट करवा दो। अगले जन्म में तुम दक्ष की कन्या होकर हिमालय पर तप करोगी और तुम्हें इच्छित वर की प्राप्ति होगी। संध्या शिव का आशीर्वाद लेकर मेघा ऋषि की यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि ने संध्या को सूर्य मंडल में पहुंचा दिया, जहां उसे सूर्य के रथ पर बैठने का गौरव प्राप्त हुआ, जिससे संध्या के ऊपर का भाग रात्रि बना और नीचे और मध्य का भाग सुबह और शाम बना। इधर मेघा ऋषि का यज्ञ समाप्त हो चुका था।
एक कन्या जब मेघा ऋषि ने हवन कुंड में पाई थी, कैसे आई हवन कुंड में बात समझ ना आई थी। भोले की इच्छा जान उन्होंने अरुंधति उसे नाम दिया। मुनिवर ने पाला पोसा उस सही समय पे विवाह किया। शिव शंकर की क्या लीला है समझ न कोई पाए। गंगा धराय शिव गंगा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
गंगा धराय शिव गंगा धराय, हर हर बोलो गंगा धराय।
शिव कथा प्रेमी बंधुओं, इस प्रकार संध्या ने तो सुखद अंत प्राप्त कर लिया, परंतु ब्रह्मा जी ने जो पाप किया था वो शिव जी को याद था, अतः उन्होंने ब्रह्मा जी को खरी खरी सुनाकर इतना लज्जित किया कि ब्रह्मा जी मौन होकर रह गए। कह सुन के शिव जी तो चले गए, पर ब्रह्मा जी इस पीड़ा को अपने हृदय में दबाए कई वर्षों तक मन ही मन जलते रहे। तब एक दिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब तक शिव को काम के वश करवाकर उनका विवाह नहीं करवा दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये सोचकर उन्होंने अपने पुत्र कामदेव को बुलाया और उसे कुछ समझाने लगे।
ब्रह्मा जी कामदेव से बोले, पुत्र मेरा एक काज तू कर, अपने काम बाणों से शिव में काम की अग्नि पैदा कर, लेके रति को साथ जा अपने, ऐसा खेल रचा कर आ, काम को हो जाए भोले शंकर, ऐसा रंग चढ़ा कर आ, तरह तरह के लालच देकर कामदेव को रिझाए। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोलो सिद्धेश्वराय।
तब कामदेव अपनी पत्नी रति को साथ लेकर शिव पर अपने काम बाणों का प्रयोग करने हेतु प्रेरित हुआ, परंतु उसे निराशा हाथ लगी। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से बोले कि शिव के प्रति ईर्ष्या रखना अच्छी बात नहीं है। यदि आप शिव को स्त्री ग्रहण करवाना ही चाहते हैं तो देवी शक्ति को प्रसन्न कीजिए, वे अवतार लेकर राजा दक्ष की कन्या बनेंगी, जिन्हें शिव जी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। साथ ही आप राजा दक्ष को देवी शक्ति की पूजा अर्चना करने हेतु प्रेरित कीजिए, जिससे वे प्रसन्न होकर उनकी कन्या बनना स्वीकार करें। तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें दर्शन दिए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे सनातन शक्ति प्रणाम, आप सारे जगत पर राज्य करती हैं, मैं चाहता हूं आप राजा दक्ष के घर पुत्री रूप में जन्म लें और शिव जी को मोहित करके उनकी पत्नी बनना स्वीकार करें, क्योंकि राजा दक्ष आपको प्रसन्न करने हेतु घनघोर तप कर रहा है। तब एक दिन देवी ने राजा दक्ष को दर्शन देकर कहा कि मैं अवश्य तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, परंतु तुम्हारे द्वारा यदि कभी भी मेरा अपमान हुआ तो मैं उसी क्षण अपनी देह का त्याग कर दूंगी।
बहुत काल तक राजा दक्ष ने आदि शक्ति का तप था किया, देवी ने तब बन के उमा घर में उनके था जन्म लिया। शिव शंकर की पूजा करनी उसने मन में ठाना था, सच तो ये है मन में उसने पति उन्हीं को माना था, उसको अपने हर सपने में शिव ही दर्श दिखाए। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोलो नमः शिवाय।
देवी सती को जब शिव की आराधना करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया तो उन्होंने शिव को प्राप्त करने हेतु नंदा व्रत का पालन किया। उधर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचकर शिव से आग्रह करने लगे कि हम दोनों तो विवाहित हैं ही, कृपा करके आप लोक हित के लिए राजा दक्ष की पुत्री सती से विवाह कर लीजिए।
दक्ष के घर तब ब्रह्मा विष्णु दोनों चलकर आए थे, दक्ष के द्वारे वो शंकर का विवाह संदेश लाए थे। एक दिन भोला दूल्हा बनकर दक्ष के द्वारे पहुंच गए, भूत प्रेत भी संग में उनके बन के बराती नाच उठे, डाल के वरमाला वो सती को अर्धांगिनी बनाए। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः ब्रह्मा शिवा
कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर बोलो कोटेश्वराय।
इस तरह एक शुभ मुहूर्त में शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। तीनों लोकों में खुशियां मनाई गईं। सारा वातावरण शिवमय होकर मंगल गान गाने लगा था। विवाह के बाद शिवजी सती को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए।
बाद विवाह वो संग सती के लोक लोक में घूम रहे। बहुत काल के बाद एक दिन दंडक वन जब वो आए, भोले की नजरों ने उस पल राम लखन को देख लिया। हाथ जोड़ कर शीश झुका कर भोले ने प्रणाम किया। इसे देख के सती के मन में प्रश्न हजारों आए। जटा धराय शिव जटा धराय हर हर भोले नमः शिवाय।
जटा धराय शिव जटा धराय हर हर भोलो जटा धराय।
सती ने जब भोलेनाथ को एक साधारण मनुष्य को प्रणाम करते हुए देखा तो उन्हें घनघोर आश्चर्य हुआ। उनसे रहा न गया, वे पूछ बैठी, हे भोलेनाथ, आप सृष्टि के पालन करता रचयिता और संहारक हो, इस पर भी आपने उस साधारण मनुष्य को प्रणाम क्यों किया? तब शिव मुस्कुराकर बोले, देवी ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये है राम मेरे आराध्य विष्णु जी के अवतार, और जो इनके साथ हैं वे लक्ष्मण हैं जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। ये दोनों भाई सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं, इसलिए मैंने इन्हें प्रणाम किया है। सती को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपना रूप सीता जैसा बनाया और वनों में विचरण करने लगी। प्रभु श्री राम ने उन्हें वनों में विचरण करते देखा तो पूछा, हे देवी सती, आप इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं और भोलेनाथ कहाँ हैं, और आपने ये सीता का रूप किस लिए धारण कर रखा है? राम के ये वचन सुनकर सती बड़ी लज्जित हुई।
एक दिवस ऋषियों मुनियों ने महाप्रयाग में यज्ञ किया। ब्रह्मा विष्णु शिव भी आए, दक्ष भी यज्ञ में पहुंचा था। एक एक करके सब देवों ने दक्ष का था सम्मान किया। लेकिन शिव ने सामने आकर दक्ष को एकदम टाल दिया। अपने इस अपमान को दक्ष जी सहन नहीं कर पाए। आदिश्वराय शिव आदिश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय।
आदिश्वराय शिव आदिश्वराय हर हर भोलो आदिश्वराय।
भक्तजनों, भोलेनाथ स्थान स्थान पर सदा लीलाएं करते आए हैं। ये भी उन्हीं की लीला थी कि जब महाप्रयाग में यज्ञ हुआ तो सभी देवी देवताओं के साथ, ऋषि मुनियों के साथ राजा दक्ष भी उसमें आमंत्रित हुए। सबने राजा दक्ष का अभिवादन किया, परंतु शिवजी ने अभिवादन करना तो दूर, उनकी तरफ देखा भी नहीं। राजा दक्ष इतने क्रुद्ध हुए कि उन्होंने भगवान शिव से अपने सभी संबंध तोड़ डाले और शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव को नहीं बुलाया। जानने पर सती बहुत दुखी हुई और शिव से पूछने लगी,
देवी तुम्हारे पिता को शायद जरा भी मुझसे प्रीत नहीं, इसीलिए तो यज्ञ में देखो हमें बुलाया है ही नहीं। बोली सती, मैं जाती हूँ, स्वामी मुझको तुम आज्ञा दो। बोले शंकर, बिना निमंत्रण वहां न जाओ, रहने दो, बड़े प्रेम
से भोले शंकर पत्नी को समझाए। गंगा धराय शिव गंगा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
गंगा धराय शिव गंगा धराय, हर हर भोलो गंगा धराय।
सती ने शिव की बात नहीं सुनी और हट करके बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में जा पहुंची। अपने पिता से शिव को न बुलाने का कारण पूछा तो दक्ष ने क्रोधित होकर उत्तर दिया कि तेरा पति मरघटवासी भस्म रमैया और भांग का सेवन करने वाला है। वो धूर्त लंपट कपटी भूत प्रेतों का स्वामी अमांगलिक है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। और तू भी बिना निमंत्रण यहाँ क्यों चली आई, जबकि मैं तुझसे और तेरे पति से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका हूँ। पिता के मुख से वचन सुने कट सहन नहीं कर पाई वो, पीड़ा लेके मन में यज्ञ अग्नि में प्राण गवाई वो। यज्ञशाला की ये घटना गणों ने शिव को बतलाई। क्रोध के मारे तब शिव जी की आंखें अंगारा बन आई। देख के शिव का तांडव देखो, समय भी थम सा जाए। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोलो विश्वेश्वराय।
भगवान शिव ने क्रोध में आकर सती की देह को अपने कांधे पर उठा लिया और तांडव करने लगे। सभी लोकों में हाहाकार मच गया, सभी देवी देवता घबरा गए। तब भगवान विष्णु ने सोचा अगर शिव शांत न हुए तो सारे जगत का सर्वनाश हो जाएगा, और जब तक सती की देह शिव के कांधे पर रहेगी तब तक इनका शांत होना असंभव है। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती की देह के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जो 51 भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर गिरे और देवी के सिद्ध शक्ति पीठ कहलाए। तब भगवान शिव ने अपने विशेष गण वीरभद्र और महाकाली को अपने पास बुलाया और आज्ञा दी कि तुम दोनों इसी समय दक्ष के यज्ञ में जाओ और सब कुछ विध्वंस कर डालो। शिव आज्ञा सुन दोनों यज्ञ में पहुंचे और त्राही त्राही मचा दी। महाकाली और वीरभद्र फिर शंकर से आज्ञा पाए। यज्ञशाला में क्रोधित होके पवन वेग से वो आए। दक्ष गणों का वीरभद्र से युद्ध भयंकर वहाँ हुआ। दक्ष का शीश काट के उसने यज्ञ अग्नि को बुझा दिया। इसे देख कर सब अतिथि गण मन ही मन डर जाए। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोलो सिद्धेश्वराय।
तो भक्तों, इस तरह शिव शंकर ने दक्ष के क्रोध और अहंकार को उसके शरीर के साथ ही समाप्त कर दिया। जिस यज्ञ में उसने शिव का अपमान किया था उस यज्ञ को पूरी तरह विध्वंस कर दिया। इस सारी घटना के पीछे शिव जी की ही लीला थी। तब सारे देवी देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव से दक्ष को क्षमा दान की याचना करने लगे। वे बोले, हम भी आपकी निंदा सुनकर सुखी नहीं है प्रभु, आप हमें भी क्षमा कर दीजिए। इस तरह बार बार वे शिव से प्रार्थना करने लगे। तब सदाशिव भोलेनाथ भला चुप कैसे रहते, वे तो परम दयालु हैं।
सबने शिव से विनती जब की, दक्ष को जीवन दान दिया, उसके शीश की जगह उन्होंने सिर बकरे का लगा दिया। भोले शंकर के गुण गाते दक्ष ने यज्ञ को पूर्ण किया। भोले बाबा की कृपा से उसने सफल ये काज किया। उसके जितने काज थे बिगड़े सभी के सब बन आए। परमेश्वराय शिव परमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
परमेश्वराय शिव परमेश्वराय, हर हर भोलो परमेश्वराय।
कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोलो नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, सारे भोलो नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोलो नमः शिवाय।
सरस्वती माँ सरगम गाए शिव विवाह की कथा सुनाए। सरस्वती माँ सरगम गाए शिव विवाह की कथा सुनाए। नारद वीणा मधुर बजाए शिव विवाह की कथा सुनाए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोलो नमः शिवाय।
भगवान शिव अपनी प्रिय सती की याद में गृहस्थी त्याग कर सारे लोकों का भ्रमण कर रहे थे, और उधर ताड़ का सुर नामक दैत्य ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से दो वरदान प्राप्त कर लिए, जिसमें पहला तो ये था कि तीनों लोकों में मुझसे बलशाली दूजा कोई न हो, और दूसरा ये कि मेरी मृत्यु भगवान शिव द्वारा उत्पन्न उनके पुत्र के द्वारा ही हो। ये दोनों वरदान पाकर ताड़ का सुर सब तरफ उत्पात मचाने लगा, ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, क्योंकि वो समझता था कि शिव वैरागी हैं, उनका पुत्र नहीं हो सकता, इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। परंतु वो मूर्ख शिवलीला क्या जाने, शिव लीला से अभिभूत होकर सभी देवी देव राजा हिमाचल से प्रार्थना करने लगे कि वे शक्ति आराधना करें ताकि शक्ति पुत्री के रूप में उनके घर में जन्मे और शिव से विवाह करके पुत्र उत्पन्न करें ताकि ताड़कासुर के जीवन का अंत हो सके। ये सुनकर राजा हिमाचल और रानी मैना बड़े प्रेम और श्रद्धा से माँ की आराधना करने लगे।
राजा हिमाचल राज जी देखो शिव की पूजा लगे करने, मन वांछित फल पाने को वो शिव आराधना लगे करने। तब सारे देवों ने मिलके देवी शक्ति की पूजा की, माँ मैना के गर्भ से जन्मे, माँ से सबने विनती की, देवता सारे मैया जी की मिलके आरती गाए। डमरू धराय शिव डमरू धराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
डमरू धराय शिव डमरू धराय, हर हर भोलो डमरू धराय।
शिव कथा प्रेमी बंधुओं, देवी देवताओं के आग्रह पर हिमाचल राज भगवान शिव की भी पूजा आराधना करने लगा। उधर समस्त देवी देवता देवी आदि शक्ति की स्तुति करने लगे, जिससे परम देवी प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन दिया। सभी देवी देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि हे मां शक्ति, जग जननी जगदम्बा, आप राजा हिमाचल के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले और भगवान सदाशिव को अपना जीवन साथी बनाए। देवी उन्हें आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गई।
देवी ने देवों का आग्रह प्रेम से था स्वीकार किया, राजा हिमालय राज के घर में माता ने अवतार लिया। देवी मैना राजा हिमालय दोनों खुशी से नाच उठे, अब दैत्यों से मुक्ति मिलेगी सोच के दोनों झूम उठे। जाकर देवी के मंदिर में शत शत शीश नवाए। योगेश्वराय शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
योगेश्वराय शिव योगेश्वराय, हर हर भोलो योगेश्वराय।
तो भक्तों, देवी देवताओं के आग्रह पर शिवा ने पुत्री रूप में हिमाचल के घर में जन्म लिया। इस पावन अवसर पर देव ऋषि नारद राजा हिमाचल के महल में जा पहुंचे और शिवा की भाग्य रेखाएं देखकर बोले, हे राजन, इसकी भाग्य रेखाएं अद्वितीय हैं। घोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव से इसका विवाह होगा।
देवी गिरिजा बचपन से ही शिव से प्रीत लगी करने, सोच में डूबी शंकर की वो हर दिन लगी उन्हें वरने। सदा ही शिव के ध्यान में रहना उनके मन को भाता था, सृष्टि के कण कण में चेहरा शिव का नजर उन्हें आता था। प्रीत की चिंगारी की ज्वाला हर पल बढ़ती जाए। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोलो विश्वेश्वराय।
ठीक उसी समय भगवान भोले शंकर तपस्या करने हिमालय जा पहुंचे, जहां स्वर्ग से आई गंगा चहु ओर अपनी पावन छटा बिखेर रही थी। उस स्थान को तप योग्य जानकर वे वहां तप करने बैठ गए। ये शुभ समाचार जब राजा हिमाचल को मिला तो वे अपनी पत्नी मैना और पुत्री शिवा को लेकर उनके दर्शन करने उनके स्थान पर आए। हाथ जोड़कर नमन कर बोले, आप मेरे राज्य में स्वतंत्र होकर तप करें और मुझ पर एक कृपा और कर दें कि मेरी पुत्री पार्वती अपनी सेवा में रख लें। ये आपकी सेवा करके भजन पूजन भी किया करेगी। ये सुनकर शिवजी मुस्काए और हिमाचल राज से बोले, पर्वतराज आपकी पुत्री अत्यंत सुंदर है और सुंदर युवतियां अक्सर योगियों की तपस्या में विघ्न का कारण बनती हैं, इसलिए मैं इसे अपनी सेवा में नहीं रख सकता। ये सुनकर पार्वती मुस्काई और विनम्रता से बोली कि हे सदाशिव, मैं प्रकृति हूं और प्रकृति के बिना पुरुष हमेशा अधूरा रहता है, इसलिए मेरी बात पर विचार करें। उसके उत्तर से शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती को अपनी सेवा में रख लिया। इस तरह पार्वती शिव के निकट रहने लगी। यही अवसर था कि जब
कामदेव ने किया वही जो ब्रह्मा जी बतलाए थे, बंजर को उपवन कर डाला, हर विध पुष्प खिलाए थे, मिलके रति संग काम के उसने शिव पर बाण चलाए थे। भोले शंकर इसे देख के क्रोधित तब हो आए थे, खोल के तीजा नेत्र कामदेव जीवित वहीं जलाए। चंद्रेश्वराय शिव चंद्रेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
चंद्रेश्वराय शिव चंद्रेश्वराय, हर 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 शिव चंद्रेश्वराय।
भक्त जनों, ये भी भगवान सदाशिव की लीला ही थी कि ब्रह्मा जी ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। कामदेव अपनी स्त्री रति को साथ लेकर अपने काम बाणों से कामुक माया फैलाता रहा और उसने अपने सामने बैठे नीलकंठ सदाशिव पर अपना काम बाण चला दिया। बाण के जादू का विष फैला और शिवजी की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने अपनी दृष्टि से दूर बैठे कामदेव को देख लिया। इस पर शिव के क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा। उनकी तीसरी आंख खुली, उसमें से ज्वाला निकली और कामदेव उसमें जलकर भस्म हो गया। परंतु अग्नि निकलती रही, तब ब्रह्मा जी ने अग्नि को अपनी माया से सागर में प्रविष्ट करा दिया। इस सारे वृतांत से शिव का मन उचाट हो गया और वो स्थान को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती का बुरा हाल था।
शिव क्या गए कि देवी उमा का मन ही नहीं लग पाता था, तब नारद जी आए वहां पर पार्वती को समझाया। यूं शंकर की याद में रोना पार्वती जी ठीक नहीं, धीरज धारो अपने मन में, धीरज खोना ठीक नहीं, शिव तो तुम्हारे ही होने हैं, प्रेम से वो समझाए। कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर 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 महाकालेश्वराय।
देव ऋषि नारद के कहने पर देवी पार्वती ने ऐसी कठिन तपस्या की कि समस्त देव लोग भी देखते रह गए। सारे देवी देवता ठगे से रह गए। तीनों लोग तपने लग गए। तब सारे देवी देव शिव के पास गए और उन्हें सारी घटना कह सुनाई। हे परमेश्वर, आप कृपया उन्हें दर्शन दीजिए ताकि वे अपना घनघोर तप बंद कर दें, जिससे सबकी रक्षा हो सके। हे महेश्वर, ताड़कासुर नामक दैत्य जो हम सबको स्वर्ग से निकालकर इंद्रासन पर शान से बैठा है, उस दानव की मृत्यु आपके द्वारा उत्पन्न बालक के शस्त्र से ही संभव है। इसलिए हे प्रभु, आप देवी पार्वती से विवाह कर लीजिए। इस पर शिवजी बोले, तथास्तु। परंतु वो एक बार गिरिराज हिमालय और मैना की परीक्षा लेना चाहते थे।
हिमालय के घर भोले बाबा नटके वेश में आए थे, अपना डमरू बजा बजा के नृत्य अजब दिखाए थे। ना मैं ना पहचानी उनको, ना गिरिराज ने पहचाना। मैना को शंकर ने शुरू किया साधु वेश में बहकाना। सुन के मैना उनकी बातें मन ही मन घबराए। मुक्तेश्वराय शिव मुक्तेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
मुक्तेश्वराय शिव मुक्तेश्वराय, हर हर भोलो मुक्तेश्वराय।
भगवान नीलकंठ गिरिराज के सम्मुख नट के वेश में प्रकट हुए और तरह तरह की लीलाएं दिखाने लगे। हिमालय और मैना शिव को पहचान नहीं पाए। शिव ने अपना रूप एक साधु का बनाया और वो मैना रानी के पास गए। कहने लगे, तुम अपनी पुत्री का विवाह एक निराश्रित कुलहीन भिखारी और बूढ़े बैल की सवारी करने वाले शिव से कर रही हो। ये सुनकर मैना रानी का हृदय उचाट हो गया और जब वो इस सदमे से उभरी तो ऋषि मुनि उन्हें ये समझाने लगे,
जिसको तुमने भिक्षुक जाना वो तो जग परमेश्वर है। जप में रहते लीन सदा वो ही तो त्रिलोकेश्वर है। इस सृष्टि का सारा काज उन्हीं के द्वारा होता है। दुख पीड़ा में सब लोगों में उनका सहारा होता है। वो ही अपने तेज से जग में सूरज को चमकाए। डमरू धराय शिव डमरू धराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
डमरू धराय शिव डमरू धराय, हर हर भोलो डमरू धराय।
भक्तों, इस तरह साधु संतों ने हिमालय राज और मैना रानी को समझाया कि आप लोगों ने शिव को नहीं पहचाना। अरे वे तो सारे जग के पालक हैं, रक्षक हैं, सच्चे सन्यासी हैं, महायोगी हैं, हर माया से मुक्त हैं। उनकी लीला तो दानव ताड़कासुर का अंत करने के लिए रची गई है। इसलिए हमारे लाखों प्रयास करने पर ही वे तुम्हारी पुत्री से विवाह करने हेतु राजी हुए हैं। ये सुनकर हिमालय और मैना के हृदय की शंका जाती रही। उन्होंने पार्वती का विवाह शिव से करने का निश्चय कर लिया। विश्वकर्मा द्वारा लगन मंडप तैयार हो गया। सभी देवी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेज दिया गया और उधर कैलाश पर्वत पर
स्वर्ग से आकर अप्सराओं ने भोले का श्रृंगार किया, तीजे नेत्र का मुकुट बनाया, चंद्रकला से तिलक किया। भूत प्रेत थे बने बराती, शिव शंकर की चली बारात। ऐसा लगता संग चंदा के तारों की डोली हो साथ, भूत पिशाच थे ढोल बजाते, चुड़ैल नृत्य दिखाए। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोलो नमः शिवाय।
भक्त जनों जब त्रिलोकेश्वर भोलेनाथ की बारात चली तो चहुओर मंगल ही मंगल छा गया। देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। बारात हिमाचल राज के द्वार पे पहुंची। मैना रानी दौड़कर अपने जमाता शिव को देखने आई तो देखती रह गई। बारात में और कोई नहीं, भूत प्रेत और चुड़ैले थी। कोई सींग वाला, कोई सूंड वाला, कोई कटे सिर वाला, तो किसी की पीठ पर आंखें थी। इनके बीच में बूढ़े बैल पर सवार भोलेनाथ विकराल रूप बनाए बैठे हुए थे। उनके पांच मुख और 10 भुजाएं थी। सारे तन पर भस्म लगी हुई थी। बाघंबर उड़े बहुत ही भयानक और विकराल नजर आ रहे थे। मैना ने विलाप करना प्रारंभ किया, अपनी पुत्री का विवाह शिव से न करने का निर्णय ले लिया। शिव हंसने लगे और सारे ऋषि मुनि उनसे विनती करने लगे कि हे भगवान अपना असली रूप दिखाइए। तब उनके आग्रह पर शिव ने अपनी माया हटाई और अपने असली रूप में आ गए।
शिव का असली रूप देख के ठगी सी रह गई बस मैना। ऐसे सुंदर मेरे जमाई भाग्य बेटी का क्या कहना। कीमत कीमत सब आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। भोले की सुंदरता पर तो नैन नहीं टिक पाते थे। देख के शंकर तब मैना को मन ही मन मुस्काए।
परमेश्वराय शिव परमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
परमेश्वराय शिव परमेश्वराय, हर हर भोलो परमेश्वराय।
भगवान शिव के इस रूप को देखकर मां मैना अत्यंत प्रसन्न हुई। शिव ने सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। उधर पार्वती जब विवाह मंडप की ओर चली तो शिव को सती की याद आ गई। शिव और पार्वती विवाह मंडप में बैठे तो राजा हिमाचल शिव के कुल का नाम और गोत्र पूछने लगे ताकि ब्राह्मण संकल्प पढ़ सके। ये सुनकर देव ऋषि नारद क्रोधित होकर बोले, इनका कुल और गोत्र तो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जानते। ये अजन्मे अजर अमर अनादि और अनंत हैं। शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं, शिव असीम हैं। ये सुनकर हिमाचल राज के हृदय की समस्त शंकाएं मिट गईं। और भक्तों इस प्रकार शिव पार्वती का विवाह प्रारंभ हुआ।
ब्रह्मा जी भी बैठ कमल पर मंगलाचार सुनाने लगे। देख के शिव का रूप निराला नारद वीणा बजाने लगे। मंत्रोच्चारण होता रहा और शिव का विवाह पूर्ण हुआ। फिर वो घड़ी थी आई बेटी का फिर कन्या दान हुआ। होते ही संपूर्ण विवाह देव फूल बरसाए। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोलो नमः शिवाय।
तो भक्तों, जब विधि पूर्वक ये विवाह संपूर्ण हुआ, उसी समय कामदेव की स्त्री रति वहां आ पहुंची और कातर स्वर में विलाप करने लगी। रोते हुए बोली, हे देवाधिदेव नीलकंठ महादेव, मेरे स्वामी की भूल को क्षमा कर दीजिए। उन्हें अपने किए का दंड मिल चुका है, उनके बिना मैं भी अधूरी हूं। यदि आपने उन्हें जीवित न किया तो फिर मैं भी जीकर क्या करूंगी। सदाशिव भोलेनाथ सोचने लगे कि कामदेव को उसके किए का दंड तो मिल ही चुका है, उसे जीवन दान देना ही होगा। यदि कामदेव ही न होंगे तो सृष्टि में प्रजनन बंद हो जाएगा और काम विहीन स्त्री पुरुष वंश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। शिव ने अपनी पावन दृष्टि कामदेव की भस्म की पोटली पर डाली। दृष्टि पड़ते ही भस्म में प्राण आ गए और कामदेव फिर से जीवित हो उठे। देखते देखते फिर सबके विदा की घड़ियां आई थी। गिरिराज और मैना जी की अखियां तब भर आई थी। अपने दिल का टुकड़ा कैसे पल में पराया हो जाता। जैसे तन को छोड़ किसी के दिल का टुकड़ा खो जाता। बेटी पराया धन होती सब ऋषि मुनि समझाए। मुक्तेश्वराय शिव मुक्तेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
मुक्तेश्वराय शिव मुक्तेश्वराय, हर हर भोलो मुक्तेश्वराय।
हिमाचल राज ने अपने हाथों से सजी पालकी में पार्वती और शिव शंकर को बिठाया और सादर विदा किया। पार्वती को लेकर शिव कैलाश पर्वत पर आ गए, जहां दोनों के मंगल मिलन से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका पालन कृतिकाओं ने किया और विश्वामित्र ने उसके बाकी सभी संस्कार पूर्ण किए। शिव ने उसे रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर उसे कार्तिकेय नाम से संबोधित किया और उसका अभिषेक किया। भगवान शंकर के इसी पुत्र ने माता पिता के आशीर्वाद से और देवी देवताओं से प्राप्त शस्त्र विद्या से ताड़कासुर का अंत किया। सभी देवी देवता असुरों के भय से मुक्त हो गए।
शिव विवाह की मधुर कथाएं जो भी सुनता ध्याता है, वो प्राणी तो शिव में खोकर लोक में शिव के जाता है। सभी अमंगल कट जाते हैं शिव विवाह की सुन के कथा। आशुतोष मेरा भोला शंकर, हर प्राणी का करता भला। वेद पुराणों में वर्णित ये पावन श्लोक बताए। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोलो गंगाधराय।
शिव कथा प्रेमी बंधु, भगवान शिव के अनेक रूप और अनेक नाम है। उनकी लीलाओं का न आदि है और न अंत। उनका पार न कोई पा सका है और न कभी पा सकेगा। हम में से किसी में इतनी शक्ति नहीं कि उनकी लीलाओं का उल्लेख कर सके। मैं भगवान सदाशिव का अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने सीमित समय में सीमित शब्दों में अपनी जीवन लीला और विवाह गाथा मुझे गाने का अवसर प्रदान किया। भक्तों, ये भी भगवान भोलेनाथ की मर्जी ही थी। मेरे इस प्रयास में अगर कोई त्रुटि कोई भूल रह गई हो तो अज्ञानी जानकर मुझे क्षमा कर दीजिए।
सरस्वती माँ सरगम गाए, शिव विवाह की कथा सुनाए, नारद वीणा मधुर बजाए, शिव विवाह की कथा सुनाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोलो नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सारे भोलो नमः शिवाय।
नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोलो नमः शिवाय।
नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले रामेश्वराय। जटाधराय शिव जटाधराय,
कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय।